नमस्कार भारत 24 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। असहिष्णुता के मुद्दे पर आमिर खान के बयान पर बवाल। आमिर के मुताबिक उनकी पत्नी ने कहा था क्या देश छोड़ देना चाहिए।
किरण एंड आई हैव लिव्ड ऑल आवर लाइव्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किरण सेज शुड वी मूव आउट ऑफ इंडिया नाउ। दैट्स अ डिजास्ट्रस एंड वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर किरण टू मेक टू मी।
आमिर को मिला केजरीवाल का समर्थन, तो अनुपम खेर ने की सवालों की बौछार। बेल्जियम में आतंकवादी हमलों की आशंका से जारी रहेगा हाई अलर्ट, तो अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया ट्रैवल अलर्ट। कर्नाटक के मौलवियों की इस्लामिक स्टेट को बेअसर करने की अनोखी मुहिम।
IS जैसी नाम निहाद तंजीमें भूले भाले बिलखसूस पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी चिकनी चपड़ी बातें सुनाकर इन्हीं गलत रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। अभिनेता आमिर खान असहनशीलता को लेकर जारी बहस में शामिल हो गए हैं। आमिर खान ने कल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वो असहनशीलता की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। आमिर ने यह भी बताया कि ऐसी घटनाओं को लेकर उनकी पत्नी किरण राव ने सवाल किया कि क्या उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। आमिर ने इस मुद्दे पर पुरस्कार लौटाने वाले बुद्धिजीवियों का भी समर्थन किया है। फ्रांस की पुलिस पेरिस के दक्षिणी उपनगर मोरूज में मिली एक बेल्ट की जांच में जुटी है। आत्मघाती बेल्ट जैसी दिखने वाली ये बेल्ट कचरे के डिब्बे में मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये बेल्ट पेरिस हमले में इस्तेमाल हुई बेल्टों से मिलती जुलती है। जांच के जरिए ये जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस बेल्ट का इस्तेमाल मुख्य संदिग्ध सालेह अब्दे सलाम ने किया था। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि राजधानी ब्रसेल्स में हाई अलर्ट की स्थिति कम से कम एक सप्ताह और जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पेरिस में 10 दिन पहले हुए हमले जैसे खतरे की आशंका बनी हुई है। हालांकि उन्होंने बताया कि बुधवार से स्कूल खुल जाएंगे और राजधानी में मेट्रो दोबारा चलने लगेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े आयोजन रद्द रहेंगे। उन्होंने कहा,
Nous avons donc confirmé le maintien des mesures qui ont été décidées.
हम लेवल 4 के खतरे की पुष्टि करते हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस और अपने संसाधनों को उपलब्ध रखने के लिए हम बड़े आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की संख्या घटा रहे हैं, जिससे ये उन जगहों पर मौजूद हो सकें जहां सुरक्षा के लिए उनकी ज़रूरत है। चार्ल्स मिशेल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फ्रांस ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई में पहली बार विमानवाहक पोत को शामिल किया है। फ्रांस की सेना के मुताबिक फ्रांस ने शार्ल डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया। फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में भी बम बरसाए। पेरिस हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने सीरिया और इराक में IS के खिलाफ हमले तेज करने का ऐलान किया था। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसके विमानों ने सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले 280 से ज़्यादा तेल टैंकरों को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि ये टैंकर अल असहाक और डेर अल जावर के पास तेल भरने के लिए खड़े हुए थे। रिपोर्टों के मुताबिक पहले ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए बम दागे गए, उसके बाद टैंकरों को निशाना बनाने की कार्रवाई शुरू हुई। इस्लामिक स्टेट को तेल के जरिए बड़ी आय होती है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो हमले का वीडियो जारी करेगा। बीते हफ्ते ऐसे ही हमले में 116 टैंकर नष्ट किए गए थे। अमरीका ने चरमपंथी हमलों के खतरों को लेकर अपने नागरिकों के लिए दुनिया भर में यात्रा से जुड़ा अलर्ट जारी किया है। BBC समाचार।
सभी श्रोताओं को पंकज प्रियदर्शी का नमस्कार। आज है 24 नवंबर दिन मंगलवार और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता आमिर खान के उस बयान से जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में आमिर खान ने देश के माहौल पर चिंता जताई और ये कहा कि एक बार उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे ये कहा था कि क्या उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, बस फिर क्या था। आमिर खान के बयान पर हो हल्ला शुरू हो गया। अपनी फिल्मों के अलावा टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते को लेकर भी आमिर खान काफी चर्चा में रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन करने के कारण गुजरात में उनकी फिल्म फना पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, तो उनकी फिल्म पीके में हिंदू धर्म पर उठाए गए सवालों को लेकर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा था। आमिर खान की ताज़ा टिप्पणी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया है, तो उनके साथी कलाकार रहे अनुपम खेर ने आमिर से कई सवाल पूछे हैं। वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of...
अभिनेता आमिर खान ने कल दिल्ली में असहनशीलता के मुद्दे पर कुछ इस अंदाज में चिंता जाहिर की। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह के दौरान आमिर खान ने कहा कि उन्हें लगता है कि बीते 6 या 8 महीने के दौरान देश में निराशा बढ़ी है। आमिर ने यह भी कहा कि असहनशीलता की घटनाओं को लेकर उनकी पत्नी भी चिंतित है और वो उन्हें देश छोड़ने की सलाह भी दे चुकी हैं। उन्होंने कहा,
जब
मैंने घर पर किरण से बात की, किरण और मैंने पूरी जिंदगी भारत में बिताई है। किरण ने पहली बार कहा कि क्या हमें भारत के बाहर चले जाना चाहिए। मेरे लिए ये किरण का दुखद और बहुत बड़ा बयान है। उन्हें अपने बच्चों के लिए डर लगता है। उन्हें ये सोचकर डर लगता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। वो हर दिन अखबार खोलने को लेकर घबराती हैं। इससे संकेत मिलता है कि बेचैनी बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है, आप उदास हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है। आमिर खान के शब्द। आमिर खान ने कहा वो भी तमाम घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में सुरक्षा की भावना होना अहम है। आमिर खान के पहले अभिनेता शाहरुख खान भी असहनशीलता के मुद्दे पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। आमिर खान ने बढ़ती असहनशीलता को लेकर पुरस्कार लौटाने वाले बुद्धिजीवियों का भी समर्थन किया। आमिर ने कहा कि हर किसी के पास विरोध का अधिकार है, वो किसी भी ऐसे विरोध का समर्थन करेंगे जो हिंसक न हो। उन्होंने कहा, रचनात्मक लोगों के लिए जो वो महसूस करते हैं उसे व्यक्त करना अहम है। मुझे लगता है कि तमाम रचनात्मक लोगों में खास तरह की भावनाएं बढ़ रही हैं जिन्हें वो समझते हैं कि अभिव्यक्त करना जरूरी है। मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव व्यक्ति के लिए अपनी निराशा जाहिर करने का एक तरीका पुरस्कार वापस करना है। आमिर खान ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में लोग नेताओं की तरफ देखते हैं कि वो सख्त कदम उठाएं और ऐसे बयान दें जिससे लोगों के बीच भरोसा बहाल हो। आमिर खान ने धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों की जान लेने को वो ठीक नहीं मानते। आमिर खान के इन बयानों को लेकर एक बहस छिड़ गई है जिसमें कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
आमिर खान के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने वालों का अंबार सा लग गया है, तो बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी आगे आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आमिर खान के एक एक शब्द सत्य हैं और वे आमिर की सराहना करते हैं। केजरीवाल ने आगे ट्वीट किया, भाजपा को गाली देकर और धमकी देकर लोगों की आवाज़ नहीं बंद करनी चाहिए। केंद्र सरकार को लोगों में सुरक्षा कायम करने के लिए ठोस कदम उठानी चाहिए। लेकिन आमिर के साथ कई फिल्में करने वाले अनुपम खेर ने आमिर के बयान की आलोचना की है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, प्रिय आमिर खान, क्या आपने किरण से पूछा था कि वो कौन से देश जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें ये बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? अनुपम खेर ने आमिर को संबोधित करते हुए एक और ट्वीट किया, क्या आपने किरण को बताया है कि आप इस देश में इससे भी ज़्यादा बुरे दौर में रहे हैं, लेकिन आपने कभी देश छोड़ने का नहीं सोचा? फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर भाजपा की सांसद हैं और पिछले दिनों अनुपम खेर ने सम्मान लौटाने वाले लेखकों और कलाकारों के जवाब में मार्च फॉर इंडिया निकाला था और कहा था कि देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अनुपम खेर के अलावा ट्विटर पर कई लोगों ने आमिर खान के बयान की आलोचना की है, लेकिन कई लोग आमिर के समर्थन में भी सामने आए हैं। साइमन ट्वीट नाम से साइमन ने लिखा है कि आमिर खान को भारत का प्रतिनिधित्व करने का कोई भी पद नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें अतुल्य भारत विज्ञापन से अलग हो जाना चाहिए और पैसा लौटा देना चाहिए। जबकि स्नेहल गांधी लिखती हैं कि आमिर खान का बयान निराशाजनक है, फिल्म इंडस्ट्री में बेवकूफ़ी बढ़ रही है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राजन महान ने लिखा है कि अगर आमिर बिना गाली सुने खुलकर अपनी बात भी नहीं रख सकते तो यह दिखाता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और स्वतंत्रता सिमट रही है। इस समय टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती। सीमा, आपने सुना कि आमिर के बयान को लेकर कैसा विभाजन दिख रहा है लोगों की राय में, लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है?
मतलब विभाजन वाली स्थिति है जो आमिर?
नहीं, आमिर के बयान को लेकर मैं पूछ रहा हूँ।
जी हाँ, विभाजन तो है एक तरह का उनकी राय को लेकर, और ये तो खूबसूरती है भारत में, और पब्लिक ओपिनियन यही होता है, कोई भी एक राय बनती है उसके खिलाफ भी लोग बोलते हैं और उसके पक्ष में भी लोग बोलते हैं। लेकिन जहां तक असहिष्णुता की बात है, आमिर ने कई चीजें कही और वो बिल्कुल लगातार, जैसे उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, वो हर सवाल पे बिल्कुल दो टूक अपनी बात सामने रख रहे थे। उनका ये कहना था कि बहुत चीजें हुई हैं पहले भी, उन्होंने राजनीतिज्ञों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कई राजनीतिज्ञ और इस संदर्भ में बीजेपी वाले कहते हैं कि 1984 में फला चीजें हुई थी, और उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि कोई चीज पहले हुई है, उसका दोबारा होना या उस प्रकार की परिस्थितियां बनना जब कुछ लोग अपने आप को घिरा हुआ महसूस करें, वो कलाकार हो, लेखक हो, या व्यक्ति हो, या भारतीय नागरिक हो, तो उससे एक बहुत विचित्र सी स्थिति बनती है। और ये कहना कि कोई भी चीज पहले हुई थी लिहाजा अब हो रही है, तो सही है, गलत होगा।
लेकिन सीमा, वही मैं आपसे अगला सवाल वही पूछ रहा था कि जो एक तबका ऐसा है जो बार बार ये सवाल उठा रहा है कि देश में पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर सवाल उठे हैं लेकिन इस तरह नहीं उठे हैं, और भाजपा की सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, तो इसमें आपको कोई दम दिखता है?
जी, थोड़ा बहुत तो राजनीति होती है, और लेखकों ने, और विशेषकर अगर आपको स्मरण होगा कि गुलजार साहब ने साफ कहा था कि लेखक होते हैं वो राजनीतिक एक रवैया लेते हैं, या जो भी वो कुछ कहते हैं वो भले ही राजनीतिक दल से उसका कोई सीधा संबंध ना हो, या हो भी तो भी वो बात अपने ही वजन पे वो राजनीतिक हो सकती है और होती है कभी कभी। लेकिन देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि घटनाएं बढ़ रही हैं या कोई चीज ज्यादा हो रही है। इस चीज को लेकर वो भले ही दादरी का हादसा हो, या फिर वो हादसा हो जो दिल्ली के ही बहुत पास दो दलित बच्चे जल गए, या और इस तरह की चीजें हों, बात उठ ये रही है कि उस पर सरकारों का रवैया क्या है। बात ये नहीं है कि ये चीजें हो रही हैं और पहले नहीं हुई थी, बेवकूफी की बात होगी ये कहना कि भारत में पहले ये सब नहीं हुआ था। जब सरकारें उसको एक तरह से डाउन प्ले करती हैं, नजरअंदाज करती हैं, या उनकी जो राय होती है, वो जो भीड़ होती है, जो उत्तेजित होती है, उस राय से मेल खाती है, खतरे की घंटी वो होती है।
जी सीमा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि जब कलाकार हो या बुद्धिजीवी हो, जो इतना संवेदनशील अगर मामला बनता हो, तो उनको बयान देते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि आमिर के बयान को लेकर जिस तरह हम लोग ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं उनसे।
अच्छा, तो इसका मतलब कि सहिष्णुता बहुत बढ़ गई है, लिहाजा लेखकों को और क्रिएटिव लोगों को बोलना नहीं चाहिए? मुझे तो इसमें कोई मसला लगता है, इस पूरे प्रपोजिशन में मसला लगता है, क्योंकि अगर वाकई सहिष्णुता उतनी ही थी जितनी है एस्टैब्लिशमेंट में और उसके रवैये में क्रिएटिव लोगों के प्रति, तो लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम, तो लोगों को हर प्रकार की बात कहने का अधिकार होना चाहिए, जिस तरह से अनुपम खेर को अधिकार है कि वो अपनी बात कहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सीमा चिश्ती आपका। ये थी वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती। और अब चर्चा एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में अभी हाई अलर्ट जारी रहेगा, तो अमेरिका ने दुनिया भर में यात्रा कर रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। फ्रांस में पुलिस को एक आत्मघाती बेल्ट जैसा उपकरण मिला है जिसकी जांच की जा रही है, तो आईएस के खिलाफ फ्रांस और अमरीका के हमले में तेजी आई है। रिपोर्ट सुना रहे हैं वात्सल्य राय।
बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि आतंकवादी हमले की आशंका को लेकर ब्रसेल्स के इलाके में हाई अलर्ट एक सप्ताह और जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि 10 दिनों पहले पेरिस में हुए हमले की तरह के हमले की आशंका काफी गंभीर है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बुधवार से स्कूल खुल जाएंगे और राजधानी की मेट्रो सेवाएं भी बहाल हो जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हाई अलर्ट के बावजूद हमें धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन की ओर लौटना चाहिए, ये जरूर है कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। उधर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए दुनिया भर में यात्रा को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट आतंकवादी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है, मौजूदा सूचना के मुताबिक इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, बोको हराम और अन्य गुट कई इलाकों में आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह अलर्ट अगले साल 24 फरवरी तक जारी रहेगा। पिछले कुछ महीनों में फ्रांस, रूस, माली और अन्य देशों में बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों को सार्वजनिक जगहों पर और यात्रा के समय ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है। उन्हें अपने इलाकों के बारे में जानकारी रखने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। दूसरी ओर फ्रांस की पुलिस पेरिस के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में मिले एक उपकरण की जांच कर रही है, जिसे आत्मघाती बेल्ट माना जा रहा है। कूड़ा इकट्ठा करने वालों को ये बेल्ट मोरूज के एक कूड़ेदान में मिली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये बेल्ट उस बेल्ट की तरह है जिसे पेरिस हमलों में इस्तेमाल किया गया है। पेरिस हमलों के बाद चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चल रही कार्रवाई में अब फ्रांस का एक जहाजी बेड़ा भी शामिल हो गया है। शार्ल डी गोल नाम के इस विमानवाहक पोत से इराक और सीरिया के इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला किया गया। इस बीच अमरीकी सेना ने भी दावा किया है कि पूर्वोत्तर सीरिया में उन्होंने IS के कब्जे वाले इलाके में ईंधन के कई ट्रकों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका ने पहले भी अपने हवाई हमलों में तेल टैंकरों को नष्ट किया था। तेल के उत्पादन से IS को अच्छी खासी कमाई होती है।
अब एक बार फिर लौटते हैं भारत की ओर। कर्नाटक के मौलवियों ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को बेअसर करने के लिए शुक्रवार की नमाज के बाद युवाओं को अहिंसा के राह पर चलने की प्रेरणा दी जाएगी। पूरी रिपोर्ट सुना रहे हैं बेंगलोर से इमरान कुरैशी।
मुंबई पर 2008 के आतंकी हमले के बाद दक्षिणी राज्य केरला के मौलवियों ने लोगों को अचरज में डाल दिया था। एक बहुत ही शानदार समारोह में मौलवियों ने कहा था कि इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। पिछले हफ्ते बेंगलुरु के जामिया मस्जिद के मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रश्दी ने भी उसी तरह का कदम उठाया है। उन्होंने कर्नाटका के 6000 मस्जिदों के मौलवियों को एक सर्कुलर भेजा। इस सर्कुलर में मौलाना रश्दी कहते हैं,
तमाम मसाजिद के आइम्मा व खुतबा व जिम्मेदारान ने इस मिल्लत के दानिश्वरों से पुरजोर अपील करते हैं कि खुतबे जुमा या दीगर मुख्तलिफ मजालिस में जब भी मौका हो इस हकीकत को पेश करें कि आजकल दाइश और IS जैसी नाम निहाद तंजीमें भूले भाले बिलखसूस पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी चिकनी चिपड़ी बातें सुनाकर अपनी जानिब रागिब करने और इन्हीं गलत रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज इस पुरफुतन दौर में अपनी औलाद की सही निगरानी न करें और उनके हरकात व सकनात पर नज़र न रखें तो शायद कल खून के आंसू रोना पड़े।
मौलाना रश्दी का कहना है कि इस सर्कुलर को सभी जिलों से बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। जामिया के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के पूर्व निर्देशक अख्तर उल वासे भी इस पहल की तारीफ करते हैं।
इस दुनिया के अंदर जो अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इसके अंदर जो है हम जो अपनी युवा पीढ़ी है उसको धर्म का जो सकारात्मक स्वरूप है और जो धर्म की मूल भावना है जो के शांति प्रिय है, जो मानवता के से जुड़ी हुई है, जो के किसी भी बेकसूर को ऊपर हिंसा के खिलाफ है, वो सबका दायरी बात है कि एक असर पड़ेगा।
दिलचस्प बात यह है कि केरला और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी मौलवियों ने ISIS को एक आतंकवादी और इस्लाम विरोधी संगठन बुलाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को धर्म से ना जोड़ने की बात कही थी, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इन कोशिशों से लोगों के मन में बनी छवि बदलेगी या नहीं।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर इलाके की एकमात्र पैसेंजर ट्रेन एक बार फिर से बंद कर दी गई है। माओवादियों ने 25 नवंबर को 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद रेल प्रशासन ने यह फैसला किया। इसके अलावा बस्तर से चलने वाली सभी मालगाड़ियों को भी रात में नहीं चलाने का फैसला किया गया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फैसला हुआ है। रायपुर से आलोक प्रकाश पुतुल की रिपोर्ट।
58502 किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन जो बस्तर के किरंदुल से चलकर ओडिशा के रास्ते आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाती है, उसे अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। 472 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह पैसेंजर ट्रेन इस आदिवासी बहुल इलाके की एकमात्र ट्रेन है जिससे हर दिन हजारों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन माओवादी हिंसा के कारण यह देश की अकेली ऐसी ट्रेन बनकर रह गई है जो किसी भी दिन बंद कर दी जाती है। इस ट्रेन के बंद होने का आलम यह है कि पिछले 600 दिनों में लगभग 300 दिन यह ट्रेन बंद रही है। इस ट्रेन को 24 नवंबर यानी आज से फिर शुरू होना था, लेकिन रेल प्रशासन ने इस पैसेंजर ट्रेन को फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। जगदलपुर के स्थानीय पत्रकार अविनाश प्रसाद कहते हैं,
जगदलपुर से विशाखापट्टनम की ओर चलने वाली जो यात्री पैसेंजर है उस पर एक बड़ी जनसंख्या जो है वो रोजाना आवागमन करती रही है। रेल यातायात जो है वो अपेक्षाकृत काफी सस्ता होता है और इन घाटियों और पहाड़ियों वाले क्षेत्र में सुरक्षित भी होता है। यात्री पैसेंजर जगदलपुर से किरंदुल तक जाती है, इसमें बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बसें या टैक्सी उन स्टेशनों से होकर के नहीं जाती हैं।
इस रेल खंड पर पिछले डेढ़ महीने में माओवादियों ने कम से कम 7 अवसरों पर रेल पटरी को नुकसान पहुंचाया है और डिविजनल रेल मैनेजर चंद्रलेखा मुखर्जी का कहना है कि पुलिस जिस दिन हालत सामान्य होने की घोषणा कर देगी इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी।
जो अटैक्स हुए हैं वो एक हमारे 2 टावर कार जो है वो जले हैं और उसके लिए हमने पुलिस को इत्तला करी है। जब तक हमको स्थानीय पुलिस ये ना बता दे कि अब हम लोग चला सकते हैं।
लेकिन बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक SRP कल्लूरी का कहना है कि रेलवे के साथ संवाद बेहतर हो तो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सुविधा होगी।
मिलिट्रीली ये लोग पुलिस को डोमिनेट नहीं कर पा रहे तो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ के रेलवे लाइंस को डैमेज करना या ट्रेन्स को डीरेल करने का कोशिश करना, एक दो घटना हुआ है, वो लोग भी आते हैं, हम लोग कुछ प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करते, कुछ घटना होता है तो कौन किसको खबर करे।
रेलवे द्वारा सुरक्षा की मांग और पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने के आश्वासन के बाद भी रेलवे के सूत्रों की माने तो कम से कम अगले पखवाड़े तक बस्तर में पैसेंजर ट्रेन के शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है।
और अब समय है एक विशेष रिपोर्ट का, जिसके लिए BBC संवाददाता स्वाति बख्शी गई पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में। ये कहानी है उस इलाके में रहने वाली उन बच्चियों की जिन्हें अनचाहा मानते हुए उनके माँ बाप नाम ही नहीं देते बल्कि नाकुशा बुलाते हैं। एक सरकारी पहल से इन बच्चियों को नाम दिए गए हैं, पर नाम और गुमनामी के बीच कैसी है इन बच्चियों की असल जिंदगी, सुनिए इस रिपोर्ट में।
मेरा नया नाम निकिता है और मेरे घर में मुझे सब में निकिता नाम से बुलाते हैं। मेरे घर में मुझे भाई नहीं है, मुझे 2 बहनें हैं।
पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा जिले के गांव में रहने वाली निकिता 11 साल की है, लेकिन ये नाम उसे 11 बरस पहले उसके माता पिता ने नहीं दिया। 4 साल पहले 2011 में जिला परिषद के एक नामकरण कार्यक्रम में उसे ये नाम दिया गया। निकिता को पहले नकुशा कहा जाता था, जिसका मतलब है अनचाही। बेटे की चाह रखने वाले माँ बाप अक्सर तीसरी या चौथी बेटी होने पर उसे नकुशा कहते हैं, ताकि इसके बाद अगर घर में बच्चा हो तो लड़का हो और किसी बेटी का मुंह ना देखना पड़े। साल 2011 में सातारा की जिला परिषद ने लड़कियों के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलने के लिए उन्हें नाम देने की रस्म अदा करने का फैसला किया। जिले में नकुशा कही जाने वाली 285 लड़कियों की पहचान की गई और उनमें से 265 को नाम दिए गए। पर क्या नाम बदलने से लड़कियों की जिंदगी पर कोई असर पड़ा है? 4 साल पहले नकुशा से निकिता बनने की बात बड़े ही उत्साह से बताते हुए 11 साल की ये बच्ची कहती है,
मैं छोटी थी ना, मुझे घर में और मेरे आसपास के लोग रहते हैं वो भी मुझे नकुशा नाम से ही बुलाते थे। पहले मुझे नकुशा नाम से बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरा नामकरण किया ना, तब मुझे निकिता नाम दिया गया है और तब से मुझे ये नाम पसंद है।
जिन 265 लड़कियों के नाम बदले गए उनमें से ज्यादातर की या तो शादी हो चुकी है या फिर वो पढ़ने के लिए आसपास के जिलों में चली गई हैं। 13 साल की एक और लड़की जिसे 4 साल पहले ऐश्वर्या नाम दिया गया बहुत ही भावुक होकर बताती है,
माझे पहिले नाव नकुशा होते, आम्ही सातारामध्ये नाव बदलायला गेलो होतो।
मैं अपनी माँ के साथ सतारा में नाम बदलने गई थी, फिर मेरा नाम ऐश्वर्या रखा गया। नकुशा नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं रोज अपने गांव से पैदल चलकर स्कूल जाती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में गरीबी है। अगर आर्थिक मदद मिली तो पढ़ाई पूरी करूँगी और डॉक्टर बनूंगी।
तो क्या ये माना जाए कि नाम बदलने से लड़कियों के लिए सोच बदलने की उम्मीद वाकई कारगर साबित हुई है? नकुशा नामकरण की मुहिम का हिस्सा रही महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली वकील वर्षा देशपांडे कहती हैं कि नाम रखने का मकसद मानसिकता में बदलाव की तरफ एक कदम था, लेकिन वो काफी नहीं है।
एक नकुशी नाम रखना तीसरी चौथी के लिए, अपने नसीब को कोसना और लड़की को जिंदगी में आने के लिए देना, ये भी हम चाहते हैं कि चलो कुछ हद तक नेगेटिवली क्यों ना हो, स्टिल कल्चर्ड है ये लोग, क्योंकि अनकल्चर्ड वो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे लड़कियों को गायब कर रहे हैं। तो इट्स अ अटैक ऑन वीमेन रेस, और इसलिए हम लोग करीबन 49 टाइम महाराष्ट्र में डेकॉय ऑपरेशन किए। जब गर्भ का लिंग बता रहे थे तब हमने रेड हैंडेड करीबन 49 टाइम्स अराउंड 60 डॉक्टर्स को हमने पकड़ा। अलग अलग महाराष्ट्र के कोर्ट्स में इनके कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं।
जिला प्रशासन अपनी नामकरण की इस मुहिम को लेकर क्या सोचता है? क्या उसे लगता है कि ये कार्यक्रम सफल रहा है और इसका कोई परिणाम हुआ है? सातारा के जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल मानते हैं कि नामकरण सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत अहम साबित हुआ है।
As far as your question is concerned that whether these kind of social ceremonies,
उस रस्म से जो संदेश गया और उसके बाद हमने जन्म से पहले भ्रूण की जांच नियंत्रित करने वाले कानून का बहुत सख्ती से क्रियान्वयन किया। हमने करीब 100 सोनोग्राफी सेंटर बंद कराए हैं और लगातार चेकिंग होती है।
प्रशासन कहता है कि इन सभी लड़कियों के नाम स्कूलों में भी बदले जा चुके हैं, जबकि वर्षा देशपांडे कहती हैं कि उनकी जानकारी के मुताबिक कई स्कूलों में नाम बदले नहीं गए हैं। नकुशा के बजाय किसी नाम से बुलाया जाना इन लड़कियों के लिए अहम है। सामाजिक संदर्भ में उसके सकारात्मक असर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अहम ये सवाल भी है कि क्या नाम बदल दिए जाने से लड़कियों के हालात बदल कर उनके लिए नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। स्वाति बख्शी, बीबीसी न्यूज, सातारा, महाराष्ट्र।
स्वाति बख्शी की ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। वात्सल्य राय अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी वात्सल्य
जी, पंकज जी, आज जिन खबरों को अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है उसमें असहनशीलता के मुद्दे पर आमिर खान का जो बयान है, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के वक्त लालू से गले मिलने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो सफाई दी है,
तर्क जो दिया है जी, बहुत रोचक तर्क है वो
जी। और वैष्णो देवी के करीब हेलीकॉप्टर की एक हादसा जो कल हुआ था उसकी खबर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे की खबरें अहम हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आमिर खान के उस बयान को प्रमुखता से छापा है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी किरण राव ने पूछा कि क्या उन्हें भारत के बाहर चले जाना चाहिए। इस सवाल को हेडिंग बनाया है अपनी खबर का इंडियन एक्सप्रेस ने। आमिर ने यह बयान रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह के दौरान दिया
जो एक्सप्रेस ग्रुप ही कराता
जी, है जी। और इंडियन एक्सप्रेस ने लीड स्पेस में अरुण जेटली के बयान को भी जगह दी है। जेटली ने इस कार्यक्रम में मीडिया की चुनौतियों को सामने रखा था। जनसत्ता ने भी आमिर खान के बयान से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। नई दुनिया ने इस खबर को एंकर स्पेस में जगह दी है। हेडिंग दिया है पत्नी इतनी डरी कि देश छोड़ने की सलाह दी। वहीं हिंदुस्तान अखबार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सफाई को लीड खबर बनाया है। लालू से गले मिलने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था उस पर अरविंद केजरीवाल ने कल सफाई दी थी कि लालू ने उन्हें जबरन खींचकर गले लगा लिया। दैनिक जागरण ने भी इसे लीड खबर बनाया है और हेडिंग दिया है न लालू के साथ थे और न रहेंगे। दैनिक भास्कर ने वैष्णो देवी जा रहे हेलीकॉप्टर की दुर्घटना को लीड खबर बनाया है। अखबार ने बताया है कि हेलीकॉप्टर गिद्ध से टकरा गया था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तस्वीर लगाकर पूरी घटना को बयान किया है। कई अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर में दिए गए भाषण को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता ने मोदी के बयान को हेडलाइन बनाया है, आतंक के खिलाफ दुनिया एक हो। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित क्रिकेट सीरीज की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है। पंकज जी
बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय। और कार्यक्रम के अंत में अब समय है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। अभिनेता आमिर खान भी असहनशीलता को लेकर जारी बहस में शामिल हो गए हैं। आमिर खान ने कल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वो असहनशीलता की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। फ्रांस की पुलिस पेरिस के दक्षिणी उपनगर मोरूज में मिली एक बैल की जांच में जुटी है। आत्मघाती बैल जैसी दिखने वाली ये बैल कचरे के डिब्बे में मिली। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि राजधानी ब्रसेल्स में हाई अलर्ट की स्थिति कम से कम एक सप्ताह और जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पेरिस में 10 दिन पहले हुए हमले जैसे खतरे की आशंका बनी हुई है। फ्रांस ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई में पहली बार विमान वाहक पोत को शामिल किया है। फ्रांस की सेना के मुताबिक फ्रांस ने शार्ल डी गॉल एयरक्राफ्ट करियर से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।